بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتا متروں، آج کے کاریکرم کا شبھارمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی 154 سے 157 آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری پرہیزگار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور جو لوگ ایشور کے مارگ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو جیوت ہیں پرندو تم اسے سمجھ نہیں پاتے، اور نسندے ہم تھوڑے بھے، تھوڑی بھوک، کچھ جان مال اور اتپاد میں کمی سے تمہاری پریکشا لیں گے، اور ہے پیغمبر، آپ دھیروانوں کو شبھ سوچنا دے دیں جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ نسندے ہم ایشور ہی کے لیے ہیں اور اسی کی اور واپس جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے پالنہار کی اور سے آشیرواد اور دیا ہے، اور یہی لوگ صحیح مارگ پر ہیں۔
دوستوں آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا، ہمارے پرسارن کو آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9510 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ دوستوں ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.ir۔ دوستوں ہمارے آج کے کارکرموں کی روپ ریکھا بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر سے اپنی ویب سائٹ کا پتہ بتانا چاہتا ہوں کہ parstoday.ir/hi ہماری یہ ویب سائٹ پردہ چینج ہو گیا ہے۔ ہمارے آج کے کارکرموں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے، سب سے پہلے آپ وشو سماچار سنیں گے، اس کے اپرانت راجنیتک چرچا کا دینی کارکرم پرسارت کیا جائے گا۔ راجنیتک چرچا کے اپرانت آپ سنیں گے کارکرم وشو درپن، اور سبھا کا انتم کارکرم ہوگا جل سنکٹ۔ تو دوستوں یہ تو تھی ہمارے آج کے کارکرموں کی روپ ریکھا، اور ابھی آپ کچھ کھڑوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیں گے۔ اب آپ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ تہران نے یورپی سنگھ کے ودیش نیتی پربھاری کے بیان کو رد کر دیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں ایران کا ساتھ دیا جائے گا۔ یمن کے انصار اللہ آندولن کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور سنیکت عرب امارات امریکہ کی کٹھ پتلی ہیں۔ گجرات سرکار نے سابرمتی آشرم کو کھما کیجیے گا گجرات سرکار نے سابرمتی آشرم کو میوزیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اور اب آپ مریم مہردادی اور اختر عباس سے وستار سے سماچار سنیے۔
ایران کے ودیش منترالے کے پروکتا نے یورپی سنگھ کی ودیش نیتی پربھاری کے بیان کو پکشپات پر آدھارت قرار دیتے ہوئے اسے رد کر دیا ہے۔ سعید خطیب زادے نے یورپی سنگھ کے ودیش نیتی پربھاری کے ذمہ دار یوس جوزف بوریل کے بیان کو دائی توہین بتاتے ہوئے اس کی بھرسنا کی اور اسے رد کر دیا۔ ودیش منترالے کے پروکتا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جوزف بوریل کا یہ بیان نہ کیول آدھارہین ہے بلکہ فارس کی کھاڑی اور عمان ساگر میں شانتی و سرکشا کی استھاپنا میں بھی کوئی سہایتا نہیں کرے گا۔ ودیش منترالے کے پروکتا نے زرنی شاسن کے سرکاری آتنکواد اور ویاپارک جہازوں کے سمبندھ میں اس کی ودھونسک کاروائیوں پر یورپی سنگھ کی چپی کی اور سنکیت کیا اور کہا کہ ان دیشوں کو ایسا ویوہار نہیں کرنا چاہیے جو پکشپات کا سوچک ہو، کیونکہ اس سے ان کی کتھنی اور کرنی پر پرشن چنہ لگ جاتا ہے۔ انہوں نے عمان ساگر میں اسرائیلی جہاز پر حملے کے سمبندھ میں اسرائیل، برٹن اور امریکہ کے نرادھار دعووں کو اسویکار بتایا ہے۔
ایران نے راجنیتک ڈھنگ سے افغان سمسیا کے سمادھان پر بل دیا۔ ایران کے ودیش منتری نے وشو سمودائے کا آہوان کیا ہے کہ وہ راجنیتک ڈھنگ سے افغان سمسیا کے سمادھان کے لیے سپشٹ درشٹی کون اپنائے۔ ودیش منتری محمد جواد ظریف نے بل دے کر کہا کہ وشو سمودائے کو چاہیے کہ وہ راجنیتک ڈھنگ سے افغان سمسیا کے سمادھان اور ہنسا اور اس کے پریناموں کی برسنا کے لیے سپشٹ درشٹی کون اپنائے۔ ودیش منتری نے رویوار کو افغانستان کے معاملوں میں راشٹر سنگھ کے مہاسچیو کے وشیش دوت جان اورنو سے تہران میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ودیش منتری نے افغانستان کی خطرناک و جٹل پرستھتی کی اور سنکیت کیا اور ودیشی شکتیوں کی غلط نیتیوں کو افغانستان کی ورتمان پرستھتی کا مہتوپورن کارن بتایا۔ विदेश मंत्री ने अफगानी गुटों के मध्य वार्ता और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करने हेतु तेहरान की तत्परता की घोषणा की और कहा कि केवल अफगानी गुटों के मध्य वार्ता से इस देश की समस्या का समाधान किया जा सकता है।
यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के वरिष्ठ सदस्य ने कहा है कि संयुक्त अरब इमारात और संयुक्त अरब इमारात अमरीकी कठपुतली हैं। मोहम्मद अली अल हुसी ने कहा कि यमन की समस्त कठिनाइयों और युद्ध के पीछे अमरीका है और सऊदी अरब और इमारात तो उसके लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के मात्र हथकंडे हैं। तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि अमरीका ने जहां भी कदम रखा वहां के लोगों को बर्बादी व विनाश उपहार में दिया। उन्होंने यमन के खिलाफ अमरीकी सरकार के क्रियाकलापों की आलोचना करते हुए कहा कि अमरीका सदैव डॉलर के मुकाबले में यमनी रियाल को आघात पहुंचाने की चेष्टा में रहा है। उन्होंने कहा कि जब अमरीका सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन गया तो वहां के लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं व कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं और आज हमारे यमनी लोग भी अमरीका के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
यमन के जन आंदोलन अंसारुल्ला ने सऊदी अरब की जेलों में कैद फिलिस्तीनियों को सुनाई गई सजाओं की निंदा की है। इरना की रिपोर्ट के अनुसार यमन के अंसारुल्ला आंदोलन के राजनीतिक कार्यालय ने एक बयान जारी किया जिसमें सऊदी अरब में स्थित फिलिस्तीनी नागरिकों के विरुद्ध आले सऊद के अदालती फैसलों और सजाओं की निंदा की गई है। बयान में कहा गया है कि इस प्रकार के सऊदी फैसले वास्तव में फिलिस्तीनी काश के शरीर में खंजर घोंपने और अतिग्रहणकारी जवानी शासन के साथ दोस्ती के समान हैं। बयान में कहा गया है कि सऊदी अधिकारी अपने हकीकत और प्रवृत्ति के दृष्टिगत अतिग्रहणकारी इसराइल के साथ संबंधों की बहाली का इच्छुक हैं। यमन के अंसारुल्ला आंदोलन ने इस्लामी राष्ट्रों से अपील की है कि वो सऊदी अरब में कैद फिलिस्तीनी नागरिकों से एकजुटता और सहृदयता करने के साथ उनकी स्वतंत्रता के लिए आले सऊद सरकार पर दबाव डालें। यमन के प्रतिरोधकर्ता गुट ने साथ ही साथ ये भी ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीनी नागरिकों की स्वतंत्रता के बदले सऊदी कैदियों को आजाद करने के लिए भी तैयार करें।
ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। फिलिस्तीन के इस्लामी संगठन हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख ने कहा है कि हमास अमरीका और ज़ायनी शासन के मुकाबले में ईरान के साथ रहेगा। तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार इस्माइल हनिया ने कहा कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध का एक भाग है और हमास ईरान के साथ रहेगा। उन्होंने तेहरान में अल आलम से साक्षात्कार में कहा कि हमने फिलिस्तीनी प्रतिरोध के प्रति ईरान के अनवरत व लगातार समर्थन को देखा है। उन्होंने बल देकर कहा कि अमरीका और ज़ायनी शासन की ओर से हर खतरे व चुनौती के मुकाबले में हम ईरान के साथ रहेंगे।
मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ज़ायनी शासन का बहिष्कार करने पर आधारित आइसक्रीम बनाने वाली अमरीकी कंपनी के फैसले के समर्थन का ऐलान किया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार कुछ समय पहले आइसक्रीम बनाने वाली अमरीका की प्रसिद्ध कंपनी बेन एंड जेरी ने फिलिस्तीन के अतिग्रह क्षेत्रों में बनाई गई गैरकानूनी बस्तियों में अपनी आइसक्रीम न बेचने का फैसला किया था जिसको मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमएनएससी इंटरनेशनल ने कानूनी मानते हुए उसके फैसले का समर्थन करने की घोषणा की थी। एमएनएससी इंटरनेशनल ने अपने जारी बयान में कहा है कि फिलिस्तीन के अतिग्रहित इलाकों में बनी इसराइल बस्तियां गैर कानूनी हैं और उनके निर्माण अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के विरोध भी समझे जाते हैं। बयान में कहा गया है कि गैरकानूनी बस्तियों के निवासियों से सीधे फिलिस्तीनियों के मानवाधिकार के उल्लंघन से गहरा संबंध है।
महात्मा गांधी से जुड़ी स्मृतियों वाले साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के गुजरात सरकार के प्लान का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस शासित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि साबरमती आश्रम को गिराने का फैसला चौंकाने वाला है, ये राजनीतिक फैसला लगता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, इस पर एक बार फिर विचार करना चाहिए। गहलोत ने गुजरात सरकार के इस फैसले को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करार दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि साबरमती आश्रम को गिराकर म्यूजियम बनाने का गुजरात सरकार का फैसला चौंकाने वाला और गलत है। गहलोत ने कहा कि यहां लोग ये देखने आते हैं कि कैसे महात्मा गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी सादगी के साथ बिताई, उन्होंने कैसे समाज के हर वर्ग को आजादी के आंदोलन से जोड़ने का काम किया था। उन्होंने इस आश्रम में अपनी जिंदगी के बहुमूल्य 13 साल गुजारे थे। साबरमती आश्रम को उसके सद्भाव और समावेशी विचारों के लिए जाना जाता है। भारत और दुनिया जाने वाले लोग यहाँ किसी वैश्विक स्तर की इमारत देखना नहीं चाहते, यहाँ आने वाले लोग सादगी और आदर्शों के ही मुरीद हैं, इसलिए इसे आज भी आश्रम ही कहा जाता है, कोई यहाँ म्यूजियम नहीं देखना चाहता।
भारत में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखे जाने के बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि कुछ योजनाओं का नाम भी बदला जा सकता है जो गांधी परिवार के नाम पर हैं। नाम बदले जाने को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है और विपक्ष इसे प्रतिशोध की राजनीति बता रहा है। कर्नाटक कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने बीजेपी नेता सीटी रवि के ट्वीट पर कहा कि इंदिरा कैंटीन के नाम में बदलाव की मांग कुछ और नहीं बल्कि प्रतिशोध की राजनीति है। भाजपा के नेतृत्व के नाम पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं, क्या हमने उन नामों को बदलने की मांग की थी?
भारत नियंत्रित जम्मू कश्मीर के बाद अब पंजाब में संदिग्ध ड्रोन विमान देखा गया। पंजाब पुलिस ने टिफिन बॉक्सों में भरे विस्फोटक और हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान की सीमा से लगे गांवों से बरामद होने का दावा किया है। राज्य पुलिस के चीफ दिनकर गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस मामले पर काम कर रही है।
अफगानिस्तान से मिलने वाली रिपोर्टों में कहा गया है कि तालिबान ने कुंदुज और सरपुल शहरों के अहम केंद्रों पर कब्जा कर लिया है। अफगान अधिकारियों का कहना है कि कुंदुज और सरपुल में तालिबान ने अहम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है और वो कुंदुज और सरपुल के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं।
अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी करके दावा किया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान सुरक्षा बलों और अमरीका के हवाई हमलों में 572 से अधिक तालिबान लड़ाके मारे गए जबकि 309 अन्य घायल हो गए।
एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी ने दावा किया कि अफगानिस्तान में तालिबान की प्रगति और एक ही दिन में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के निकल जाने के बाद अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी टीम अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों को वापस बुलाने के कार्यक्रम को परिवर्तित करने का इरादा नहीं रखती है।
अमरीका ने पिछले महीने अफगानिस्तान के बगराम सैनिक छावनी से अपने सैनिकों के महत्वपूर्ण भाग को बाहर निकाल लिया है। इस बीच अमेरिका की इससे पहले वाली ट्रंप सरकार में इस देश के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि अगर तालिबान कामयाब हो जाता है तो समस्त अमरीकियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।
तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अफगान सरकार ने इस देश में युद्ध आरंभ किया है। समाचार एजेंसी फार्स प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान गुट के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता ने अल जजीरा टीवी चैनल से साक्षात्कार में कहा है कि अफगानिस्तान की सरकार ने युद्ध का फैसला लिया है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान में एक के बाद दूसरे प्रांतों पर तालिबान के होते कब्जे के बारे में,
अमेरिका, सऊदी व पाकिस्तान,
और फिर बात करेंगे यमन में मानवता के साथ खिलवाड़ करते सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के अपराधों पर खामोश मानवाधिकार संगठनों के बारे में, और अंत में चलेंगे भारत जहां कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं राहुल गांधी और साथ ही वहां मुहर्रम के आगमन पर आयोजित हुई शोक सभाओं के बारे में बताएंगे।
5 अगस्त 2019 को कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद
तो सबसे पहले चलते हैं अफगानिस्तान और बात करते हैं इस देश में जारी भीषण युद्ध के बारे में। एक ओर जहां तालिबान इस देश के बाद दूसरे प्रांत पर कब्जा कर रहा है, तो वहीं अफगान अधिकारी इस संकट के लिए अमेरिका को जिम्मे दार ठहरा रहे हैं। इस संबंध में मजार शरीफ से IRIB के संवाददाता बहनाम यजदानी एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अख्तर अब्बास की आवाज में।
एक बाजार जो जल रहा है, शहर पर कब्जा हो गया है, लोग या खुद आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं या भाग रहे हैं। सामने आई तस्वीर कुंदूज शहर के बाजार की है। उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित कुंदूज प्रांत का केंद्रीय इलाका है। कहा जा रहा है कि बाजार में आग लगने का कारण तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हैं। कुंदूज प्रांत के केंद्रीय शहर कुंदूज पर तालिबान का कब्जा हो गया है। केवल कुंदूज ही नहीं बल्कि सरपुल प्रांत के केंद्रीय शहर सरपुल पर भी तालिबान ने दो दिन तक चली झड़पों के बाद कब्जा कर लिया और तालिबान ने वहां पर अपना परचम लहरा दिया। इसी तरह तखार प्रांत का तालिकान शहर उत्तरी अफगानिस्तान का तीसरा ऐसा केंद्रीय शहर है जिस पर कुंदूज और सरपुल के बाद तालिबान ने कब्जा किया। अफगान सरकार ने अभी तक प्रांतों के केंद्रीय शहरों पर तालिबान के होते कब्जों के संबंध में कुछ नहीं कहा है, केवल इन इलाकों की ओर और ताजा दम सैनिकों को भेजा है। पिछले दिनों जरंज और शिविरगान शहरों पर तालिबान द्वारा किए गए कब्जे के बाद अब उन प्रांतों की संख्या 5 हो गई है जिन पर तालिबान ने पिछले 4 दिनों में कब्जा किया है। समनगान प्रांत के जनप्रतिनिधि मजार शरीफ पहुंचे जहां अफगान बलों और स्वयंसेवी बल तालिबान से मोर्चा ले रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में जारी संकट के लिए अमरीकी नीतियों को जिम्मेदार करार दिया है।
अमरीका, सऊदी व पाकिस्तान इन दर फिक्र हैं कि अफगानिस्तान एक जानबा توسط तालिबान कंट्रोल में कौन तालिबान फिरोज में सुजान।
जियाउद्दीन जिया का कहना है कि अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान ये सोच रहे हैं कि तालिबान के जरिए वो अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लें, लेकिन सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान जीत पाएगा। उनके अनुसार प्रतिरोध हर दिन ताकतवर हो रहा है और अफगानिस्तान में युद्ध जारी रहेगा। कई प्रांतों पर कब्जा होने के अलावा एक बार फिर कंधार एयरपोर्ट रॉकेट हमलों का निशाना बना जिसके कारण इस हवाई अड्डे की उड़ानें रद्द हो गयी। ये जरूर है कि अफगान सरकार ने हालिया सप्ताह में कई बार इस देश में 3 से 6 महीने तक युद्ध की स्थिति में बदलाव की बात कही, लेकिन अभी तक सिवाय तालिबान द्वारा प्रांतों पर किए जा रहे कब्जों में कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है।
और अब चलते हैं यमन और बात करते हैं इस देश के लोगों पर युद्ध के साथ साथ थोपी जा रही भुखमरी की। यमन की जनता पर जहां सऊदी अरब और उसके सहयोगी हर दिन नए नए अत्याचार कर रहे हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय केवल तमाशा ही बना देख रहा है। इस बारे में सना से IRIB के संवाददाता अब्दुल्ला अल यूसुफी अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहंदी की आवाज में।
तंदीदन बिलहिसार व तजवीअ अल
हमलावरों और उनसे संबंधित एजेंटों द्वारा यमन की 6 साल की घेराबंदी और इस देश के लोगों पर थोपी गई भूखमरी के विरोध में हजारों यमनियों ने प्रदर्शन किया और साम्राज्यवादी शक्तियों की नीतियों को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। एक यमनी नागरिक का कहना है कि ये प्रदर्शन हमलावरों और अमेरिका द्वारा यमनी राष्ट्र की घेराबंदी और यमनी जनता पर थोपी गई भूखमरी की नीतियों की निंदा करने के लिए आयोजित हुआ है। यमन पर थोपा गया आर्थिक युद्ध सैन्य जंग से कम नहीं है। यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद हुसी का कहना है कि दुश्मन भुखमरी और घेराबंदी की नीति को यमनी जनता के खिलाफ हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, दबाव बनाकर वार्ता भी करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून इस तरह की कार्रवाइयों की अनुमति नहीं देते हैं। यमनियों को पता है कि हमलावरों के नियंत्रण वाले रास्तों से आयात किए गए सामानों पर 100% की वृद्धि और बढ़ती कीमतें अंततः आर्थिक स्थिति के खराब होने का ही कारण बनेगी। इसलिए यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद इस बात पर बल देती है कि आयात होने वाली आवश्यक वस्तुओं को इंपोर्ट केवल अल हुदैदा बंदरगाह से किया जाए कि जिसकी घेराबंदी कर रखी है। सना के एक नागरिक का कहना है कि हमलावरों द्वारा इस तरह की कार्रवाइयां केवल यमनियों पर अधिक से अधिक समस्याएं थोपने के लिए हैं। अंसारुल्लाह के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि हमलावरों द्वारा लिया गया निर्णय एक त्रास दी है। यही कारण है कि यमनी जनता भूखमरी को बढ़ाने की नीति की निंदा करती है। साथ ही शत्रु की इस साजिश को भी यमनी जनता एकजुटता के साथ विफल बना देगी। जनता द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन केवल सना तक सीमित नहीं है। यमन के दक्षिण और केंद्रीय इलाकों के कई शहरों में भी सऊदी एजेंटों के शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की कमी भाड़े के सैनिकों द्वारा यमनियों की सामूहिक सजा है, जो हमलावरों और उनके एजेंटों की अक्षमता को दर्शाता है।
अब्दुल्ला यूसुफी, खबर गुजारिया, सीधा वसीम, सनआ।
और अब रुक करते हैं भारत का और बात करते हैं भारत प्रशासित कश्मीर के दौरे पर पहुंचे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की। साथ ही कश्मीर में जारी किसान आंदोलन और वहीं मुहर्रम के कार्यक्रमों में कोविड गाइडलाइनों का पालन करने की अपील, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
5 अगस्त 2019 को कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर प्रशासन और नई दिल्ली ने विपक्षी दल कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी को अपने अन्य साथियों के साथ कश्मीर की 2 दिवसीय यात्रा करने की अनुमति दे दी है। राहुल गांधी अपने कई नेताओं के साथ कश्मीर की 2 दिवसीय यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। वो कई लोगों से मिलने जा रहे हैं। बताया जाता है कि वो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसमें गुपकार अलायंस के नेता भी शामिल हैं। ये भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि वो एक समारोह को भी संबोधित करने जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। इस बीच पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी किसान अभियान से जुड़े लोगों ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में प्रदर्शन किए। उन्होंने कहा कि जो 3 उनके अनुसार काले कानून हैं, उन्हें नई दिल्ली को वापस लेना होगा। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर किसान यूनियन के एक नेता ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा
कि आज मुल्क गैर एहतजाज है, पूरे मुल्क में सीआईटीयू किसान तहरीक मिलकर तमाम लोगों ने, मजदूरों ने, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील, सीपीडब्ल्यू, हमारे डेली वेजर्स, हमारे नीड बेस वर्कर्स और उसके साथ साथ सीआईटीयू से मुंसलिक जो भी हमारी यूनियन हैं, जो भी इकाइयां हैं और किसान, जो किसान तहरीक जो पूरी भारत में है और हमारी जम्मू कश्मीर किसान तहरीक की तरफ से पूरे मुल्क में जो एहतजाज है, आज कश्मीर के हर ज़िले में उसी बैनर के तले एहतजाज हो रहा है। और मकसद हमारा यही है, ये जो अंधी बहरी सरकार है, ये जो गूंगी सरकार है, इनको बोलने के लिए बोला जाए, इनको सुनने के लिए आवाम के मसाइल सुन नहीं रही है। ये गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है, इन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए आज पूरे मुल्क में और मुल्क के साथ साथ कश्मीर के हर ज़िले में हमारे मजदूर, हमारे आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और सारे इससे जो इकाइयाँ हैं वो सड़कों पर आए हैं। हमारा मुतालबा है जो किसानों के काले कानून बनाए गए, मैंने पहले भी बताया, जो 5 अगस्त का लॉकडाउन हुआ, फिर जो कोरोना वायरस का लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन के आड़ में इस गूंगी सरकार ने, जालिम सरकार ने, गुंडागर्दी सरकार ने, जालिम सरकार ने जो कानून बनाए आवाम के खिलाफ, जो कानून बनाए मजदूरों और किसानों के खिलाफ, उन कानूनों को फिर फोर वापस लिया जाए। ये हमारा जो एहतजाज है पिछले 6 साल 2 सालों से चल रहा है, आगे इसमें और भी शिद्दत आ जाएगी। सरकार को हर हाल में, मैं एक चीज कहूंगा, झुकना पड़ेगा हमारे मजदूरों और हमारे किसानों के सामने।
इस बीच पूरे विश्व इस्लामी जनता के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मुहर्रमुल हराम के हवाले से शोक सभाएं आयोजित होनी जा रही है, जिसमें सरकार ने कहा है कि वो SOPs पर अमल करें। कश्मीर के तमाम धार्मिक नेताओं ने लोगों पर बल दिया कि वो आजादारी में उन SOPs को फॉलो करें। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
दोस्तों, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा जल संकट, लेकिन उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम विश दर्पण।
विश्व दर्पण।
दोस्तों, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय है ईरान में नए राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के शासनकाल का आगाज। ईरान में राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी का शासनकाल शुरू हो चुका है। गत 3 अगस्त को तेहरान स्थित इमाम खुमैनी हुसैनिया में एक भव्य समारोह में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने आधिकारिक तौर पर सैयद इब्राहिम रईसी को ईरान के अगले राष्ट्रपति के रूप में अनुमोदित किया। ये समारोह कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के पूर्ण अनुपालन के साथ आयोजित हुआ, जिसमें देश के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। समारोह की शुरुआत में देश के गृहमंत्री अब्दुल रजा रहमानी फजली ने 18 जून को आयोजित होने वाले राष्ट्रपति चुनावों पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें श्री रईसी ने जीत हासिल की थी। इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता ने अपने अनुमोदन आदेश में चुनाव में लोगों की सार्थक और सम्मानजनक उपस्थिति और एक लोकप्रिय और शानदार प्रबंधन के अनुभवी उम्मीदवार के चयन को क्रांति के प्रबुद्ध मार्ग अर्थात न्याय के मार्ग पर चलने के लिए राष्ट्र के दृढ़ संकल्प का संकेत करार दिया। अनुमोदन आदेश सुप्रीम लीडर के कार्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ श्री मोहम्मदी गुलपायगानी ने पढ़ा।
اکنون با تشکر از مردم عزیز و با پیروی از گزینش آنان رأی به عالم فرزانه و خستگی ناپذیر و کار آزموده و مردمی جناب حجت الاسلام آقای سید ابراهیم رئیسی را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم.
इसके बाद ईरान के नए राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने भाषण दिया। उनका कहना था कि इमाम खुमैनी और इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता के निर्देशों की वजह से इस्लामी क्रांति ने प्रगति की और उसे मजबूती हासिल हुई। उन्होंने पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमरीका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हम प्रतिबंधों को हटाए जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन लोगों की आजीविका को दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे।
و در یک جمله عرض بکنم، پیام مردم پیام تغییر وضع موجود بود.
समारोह के आखिरी भाग में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा खामेनेई ने भाषण दिया। उन्होंने नए राष्ट्रपति से कहा कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने रहें, लोगों से सच बोलें और भ्रष्टाचारियों से निडर होकर संघर्ष करें।
दौलत باید مظهر وفاق باشه. بعضی از این تغایرهای موهومی که در بین مردم وجود دارد اینا رو بایستی با نگاه وفاق آمیز و نگاه ملاتفت به عموم مردم باید این توهمات رو تضعیف کرد.
جنادش انومودن سماروه که بعد 5 اگست کو ایران کی سنسد مجلس شورای اسلامی میں راشترپتی سید ابراہیم رئیسی کا شپت گرہن سماروه آیوجت ہوا۔ समारोह में श्री रईसी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन बनवान रईस जमहूर दर पेशगाह कुरान करीम व दर बराबर मिल्लत ईरान बे खुदावंद कादिर मुताल सौगंद याद मिकुनम।
शपथ ग्रहण समारोह में 70 से अधिक देशों के 115 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस भव्य समारोह को संबोधित करते हुए इस्लामी गणतंत्र ईरान के 8वें राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ दबाव और प्रतिबंधों की नीतियों का कोई असर नहीं होगा और हम अपने अधिकारों से पीछे हटने वाले नहीं हैं।
तहरीम हो अलैह मिल्लत ईरान बायद लाग़्व गर्दद। अज़ हर तरह डिप्लोमेटिक که این هدف را محقق کند حمایت خواهیم کرد.
संसद में शपथ लेने के बाद भाषण देते हुए रईसी ने कहा कि हमारी सरकार ने विदेश नीति की प्राथमिकताओं का आधार पड़ोसी और इस्लामी देशों से रिश्तों के विस्तार पर रखा है। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि हम मानवाधिकारों के सच्चे मुहाफिज हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में इस्लामी क्रांति के सूर्य का उदय आज़ादी, राजनीतिक साझेदारी और लोकतंत्र का नया अध्याय साबित हुआ। रईसी का कहना था कि बेगुनाह इंसानों के अधिकारों पर होने वाले अत्याचार पर खामोशी को हम कबूल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अत्याचार चाहे यूरोप में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, यमन, सीरिया या फिलिस्तीन में हो, हम हमेशा मजलूमों और शोषितों के साथ खड़े रहेंगे, जबकि देश के भीतर जनता और जवान ये चाहते हैं कि हम कमजोरों और शोषितों की आवाज बने। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि ईरानी जनता पर लगे प्रतिबंध हटने चाहिए और इस लक्ष्य के लिए हम कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करेंगे। सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि हम पड़ोसी देशों के लिए अपनायत की भावना रखते हैं।
जमहूरी इस्लामी ईरान کشورها و ملتهای همسایه را خیشاوند خود می داند.
ایران میں نئی سرکار بنی ہے تو الگ الگ دیش اپنے اپنے درشتی کون سے اس بدلاو کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی نیتیاں نردھارت کر رہے ہیں۔ امریکی نو سینا میں دو دشک سے ادھک سمے تک کام کرنے والے پورو ادھیکاری مائیکل فرینکن نے ایک ٹی وی کارکرم میں پرمانو سمجھوتے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر رئیسی کے سرکار بن جانے کے بعد یہ آشا ہے کہ پرمانو سمجھوتے کو بحال کرنے کے لیے ضروری بدلاؤ کیے جائیں گے۔
I think time is on our hands. I don't believe that an immediate agreement is going to come soon, but ultimately time will assist us in figuring out what the American domestic politics permit and also provide an option, a menu of other things that the Iranians can do and also the United States and other signatories can perhaps make alterations to the original agreement to make it a fruition. We need to remember that most of the players who worked on this thing, that worked on this agreement 6 years ago, are in this administration now. So the United States has a solid team involved in this, as the EU does as well, and I think ultimately we'll be successful in doing this.
مگر ایران استھت ورشٹھ پترکار حبیب عبدل حسین کا کہنا ہے کہ پرمانو سمجھوتے کو لے کر امریکی پرشاسن نے جس پرکار کے قدم اٹھائے ہیں ان سے ایران میں امریکہ کے بارے میں اب کوئی بھی بھروسہ نہیں رہ گیا ہے۔ ویسے ایران کو امریکہ پر پہلے سے ہی سندیہ تھا، مگر امریکی سرکار نے اپنے قدموں سے ایران کے سندیہ کو صحیح ثابت کیا۔
They still regard the talks and even diplomacy with sort of suspicion and distrust. This is what already echoed in the remarks by the Supreme Leader Ayatollah Khamenei said that the new administration should take lesson from the previous administration, and that is not putting too much trust in the other side, especially the United States, because we did that. And what happened when Mr. Trump came to power, he unilaterally withdrew from the deal. So this distrust needs some time to be tackled.
ایران میں نئی سرکار کے گٹھن پر جہاں دنیا کے انیہ دیشوں کی گہری نظر ہے، وہیں بھارت بھی ورتمان حالات میں ایران سے سہیوگ وستار کے سندرب میں گہری دلچسپی دکھا رہا ہے۔ بھارت کے ورشٹھ ٹیکاکار اور پترکار سہاسنی حیدر نے اپنے کارکرم میں ایران بھارت سمبندھوں کے بارے میں بات کی اور راشٹرپتی رئیسی کے شاسن کال میں بھارت کی رڑنیتی اور پراتھمکتاؤں کے بارے میں چرچا کی۔
Remember, this is Jaishankar's second visit to Iran in just a month. In early July, he had become the first foreign dignitary to call on Mr. Raisi, carrying with him a letter from Prime Minister Modi, and had brought back an invitation to this very ceremony. That it was Mr. Jaishankar himself who has gone for this ceremony means that this isn't just a protocol visit, but it carries political weight and indicates that the Modi government does want to make a memorable beginning with the new Iranian president. Mr. Jaishankar made those visits to Tehran around a visit to Delhi by U.S. Secretary of State Antony Blinken. This means that India is still prepared to walk that tightrope between its ties with the West and those with Iran. And remember, those two remain adversaries. Nuclear talks on the U.S. rejoining the JCPOA agreement with Iran are also stalled at present after about six rounds.
सुहासिनी हैदर का मानना है कि कनेक्टिविटी सहित कई वजहों से ईरान और भारत के बीच सहयोग का विस्तार महत्वपूर्ण है। सुहासिनी हैदर का यह भी कहना है कि ईरान और भारत के संबंध कभी विस्तृत हुए और कभी इसमें कमी आई। पाकिस्तान स्थित टीकाकार असद तकवी ईरान में नई सरकार के गठन को अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं।
ईरान का जो जिसे कहा जा सकता है कि ओवरऑल पॉलिसी जो है वो काफी अरसे से यानी ये है कि हमने जो है वो खित्ते के ममालिक के साथ जो है अपने ताल्लुकात को ज्यादा बेहतर बनाना है, बिलखसूस चाइना और रशिया के साथ। अभी गुज़श्ता यानी कुछ अर्सा पहले हम जानते हैं कि तकरीबन 400 बिलियन डॉलर का जो है वो चाइना के साथ एक इक़्तिसादी मुआहदा किया, जो कि बहुत बड़ा मुआहदा जो है वो किसी मुल्क का जा सकता है। इसी तरह रशिया के साथ जो है वो ईरान के रवाबित जो है वो काफ़ी पुराने भी हैं और ये है कि टाइम टेस्टेड भी हैं। तो दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं उनके साथ भी ईरान चाहेगा कि उसके रवाबित और ताल्लुक जो है बजाय इसके कि हम हमारा इनसार जो है वो ज़्यादा यानी वेस्ट की तरफ हो के बजाय हमारा इनसार जो है वो मशरिक की तरफ जो है वो होना चाहिए और हमारा ट्रेड जो है वो ज़्यादा। खुद रईसी साहब की जो एक मैं पढ़ रहा था कि यानी उनका जो एम्फेसिस है वो कहते हैं कि हमने अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यानी ईरान के अंदर उसको हमने ग्रो करना है बजाय इसके कि हम ये जो यानी कमर्शियल जो रिटेल सेक्टर होता है उसके बजाय, क्योंकि अगर हम कमर्शियल रिटेल सेक्टर को ग्रो करते हैं तो उस सूरत में ये होगा कि वेस्टर्न ब्रांड्स जो हैं उन्हीं को हम बढ़ावा दे रहे होंगे। अगर हम अपने एग्रीकल्चर को ग्रो करेंगे तो उससे ये होगा कि हम अपने मुल्क के अंदर जो है वो जॉब्स भी पैदा कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को जो है वो बेहतर भी बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ ये इब्राहिम रईसी साहब की हुकूमत में और इक्तदार में आने से कि हमारा जो यानी किसी भी हुकूमत के अंदर मौजूद सेंटर ऑफ पावर्स होते हैं वो तमाम के तमाम जो सेंटर्स हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक जगह पे अलाइन होंगे।
ईरान में ताज़ा दम सरकार ने देश की बागडोर संभाल ली है और देश अपनी निर्धारित डगर पर पहले से अधिक गति और मजबूती से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
जल संकट।
दोस्तों, कार्यक्रम जल संकट की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
पानी के स्रोतों के प्रबंधन, पानी की आपूर्ति और पानी की संरचनाओं के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों के लिए ईरान को पहला देश माना जा सकता है। दिस पुल की पहली पंचक्की दिस पुल के प्राचीन पुल के साथ दिस नदी में 1700 साल पहले सासानी शासनकाल में बनाई गई थी। कई ऐसी पंचक्कियां थीं जो 70 साल पहले तक सक्रिय थीं और लोगों की आटे की जरूरत को पूरा करती थीं, लेकिन आटा मिलों के निर्माण के बाद इनका चलन कम हो गया। पंचक्की जल संरचनाओं का एक समूह होता है। इस समूह में बांध और पंचक्कियां होती थीं। देज नदी के निरंतर प्रवाह के कारण इस परिसर का निर्माण उसी समय किया गया था जब नदी के किनारे शहर का निर्माण किया गया था। उसके बाद शहर के विकास और निवासियों की जरूरतों को देखते हुए उसका विस्तार होता रहा।
देसफुल की पंचक्कियों का इतिहास सासानी काल से जाकर मिलता है, लेकिन नदी के तीन भागों में मौजूद उनके खंडहरों का संबंध सफवी और काजारी काल से है। ये संरचनाएं नदी के पत्थरों और ईंटों जैसी सामग्रियों से बनाई गई हैं। ये पंचक्कियां इस तरह से एक दूसरे के निकट हैं कि वो बांध का भी काम कर रही हैं, जिससे पानी की धारा को भी मोड़ा जा सकता है। ये सिस्टम आधुनिक सासानी सिस्टम था, जिसे नदी के पहले हिस्से को काट दिया जाता था। इस संरचनाओं का नाम पुल बंद या दमबेरेज है, जो नदी के पश्चिमी और पूर्वी भागों को जोड़ने के अलावा पानी की आपूर्ति या सिंचाई के लिए नदी की सतह को कम या ज़्यादा करने में मदद करती थीं। इन पंचक्कियों के भीतरी भाग की ऊंचाई लगभग 4 मीटर की होती थी।
फ्रांसीसी इतिहासकार रोमन ग्रिशमैन ने अपनी किताब ईरानी कला में इस सिस्टम को प्राचीन काल में पानी की आपूर्ति का सबसे पुराना सिस्टम करार दिया है। ग्रिशमैन के मुताबिक ये सिस्टम 1400 से 1500 साल पुराना है। नए शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं। इसी प्रकार नदी के बीच में एक विशाल मेहराब का खंडर है, जो सासानी दौर के हाल की तरह दिखता है, और सासानी राजाओं की रुचि के अनुसार इसे उनकी किसी सरदार या दरबारी से संबंधित निर्माण के अवशेष के रूप में माना जा सकता है। ये संरचना एक विशाल बांध है, जिन्हें बाद में कुछ परिवर्तनों के साथ पंचक्कियों में परिवर्तित कर दिया गया था।
पंचक्कियों के अंदर नीचे के हिस्से में 2 टुकड़ों में पत्थर है, जो नदी के पानी की ऊर्जा से घूमता है और उसके घूमने से ऊपर वाला चक्र भी घूमता है। हर पंचक्की में 5 कर्मचारी काम करते थे, जो खच्चरों पर गेहूं लाने, पंचक्की तक गेहूं पहुंचाने, चक्की के पाड़ को नियंत्रण करने और आटा इकट्ठा करने जैसी जिम्मेदारियाँ पूरी करते थे। इसी प्रकार रात में एक आदमी की जिम्मेदारी चक्कियों की देखभाल करना होती थी। जिन मौसमों में नदी में पानी की सतह कम हो जाती थी, उन मौसमों में पानी की सतह को ऊपर लाने के लिए और पानी के प्रवाह को पंचक्कियों की ओर मोड़ने के लिए पत्थरों से भरी हुई टोकरियों का इस्तेमाल किया जाता था। पत्थरों से भरी हुई ये टोकरियां एक बांध के तौर पर काम करती थीं।
ये पंचक्कियां निजी संपत्ति थीं। सफवी काल में इनकी संख्या 50 से 60 तक थी, जिनमें से कुछ बाढ़ के पानी के कारण नष्ट हो गईं। दिस पुल की पंचक्कियां देज नदी के विभिन्न भागों में स्थित हैं। उनमें से कुछ दिस पुल बांध और देज तटीय मनोरंजन स्थल से 800 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और कुछ पुराने पुल के निकट स्थित हैं। लेकिन विश्व का सबसे पुराना बहुउद्देशीय औद्योगिक परिसर शुस्तर शहर में स्थित है। ये परिसर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ऐतिहासिक बहुउद्देशीय संरचना है, जहां पानी की सुरंगें, बांध, पुल, पंचक्कियां और तेल निकालने के कारखाने स्थित हैं।
शुस्तर का ऐतिहासिक वाटर सिस्टम की, जिसे शुस्तर जलीय संरचना के रूप में जाना जाता है, उन 13 ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन धरोहरों को हकमनेशी से सासानी काल तक पानी से अधिक लाभ उठाने के लिए बनाया गया था। फ्रांसीसी पुरातत्वविद मैडम जॉन दियोलाफोवा ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसे औद्योगिक क्रांति से पहले का सबसे बड़ा औद्योगिक परिसर बताया है। ये 13 ऐतिहासिक धरोहर शुष्तर शहर में एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर स्थित हैं और 2009 में इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में 10वीं ईरानी धरोहर के रूप में पंजीकृत किया गया है।
झरने और पंचकियां शुष्तर शहर जनरचना समूह की ऐतिहासिक संरचना हैं, जिन्हें देखने के लिए सबसे अधिक लोग आते हैं। इस प्राचीन परिसर में बड़ी संख्या में पंचकियां हैं और इन पंचकियों को चलाने के लिए पानी की ऊर्जा के उपयोग का एक बड़ा उदाहरण यहां देखा जा सकता है। ये संग्रह सबसे अनोखे उदाहरणों में से एक है, जिसका उपयोग प्राचीन काल में पानी के अधिकतम उपयोग के लिए किया जाता था।
दोस्तों, इस ऐतिहासिक परिसर की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसका शुष्तर शहर के ऐतिहासिक और प्राचीन हिस्से के निकट स्थित होना है। औद्योगिक इस्तेमाल के अलावा इस परिसर का इस्तेमाल पानी की कमी वाले दिनों में शहर के लोगों को पानी की आपूर्ति के लिए भी किया जाता था। इस परिसर की एक बहुत ही सुंदर और अनूठी विशेषता यह है कि पंचक्कियों में इस्तेमाल के बाद पानी सुंदर कृत्रिम झरनों के रूप में गिरता है, जो एक शानदार दृश्य को जन्म देता है। इसी तरह से यहाँ सुंदर प्राकृतिक परिदृश्य भी पाए जाते हैं।
जल आपूर्ति टनलों के डिजाइन में जो कुछ जटिलताएं पाई जाती हैं, वो उनका भूमि सिंचाई के अलावा दूसरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होता है। गरगर बांध के पुल के पीछे की 3 टनलों का पानी पंचक्की के पाटों को घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है। शुष्तर पंचक्कियों और झरनों का निर्माण गरगर नदी में किया गया है, जो खुद एक प्राचीन काल की तकनीक और इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना है। पूर्ण रूप से गरगर नदी को खोदकर बनाया गया था और इसके निर्माण का श्रेय सासानी राजा अर्धशीर बाबकान को दिया जाता है, लेकिन पुरातात्विक अध्ययनों में इसका और भी पुराना इतिहास बताया गया है। कारून नदी के किनारे स्थित होने के कारण शुष्तर में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां और सुविधाएं रही हैं।
शुष्तर में सबसे पुरानी ज्ञात धरोहर पुरापाषाण और प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। शुष्तर पानी के बीच एक द्वीप के रूप में स्थित है और यहाँ नालों, बांधों और पंचक्कियों के रूप में हर ओर जलीय वास्तुकला के नमूने देखे जा सकते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार शाहपुर सासानी के काल में शुष्तर का विकास कार्य पूरा हुआ और इस शहर ने अपने इतिहास का सबसे शानदार समय व्यतीत किया। सिंचाई की सुविधा के कारण इस शहर में कृषि का भी विकास हुआ। शुष्तर को जलीय इमारतों और संरचनाओं का एक संग्रहालय कहा जा सकता है। उपयुक्तता की दृष्टि से ये सभी इमारतें एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए दुनिया भर में एक अनूठा शहर है।
ये निर्माण समूह इस तरह से काम करता है कि गरगर बांध ने नदी के प्रवाह को रोक दिया है और पत्थरों में खोदी गई 3 टनलों तक पानी की आपूर्ति के लिए पानी के स्तर को ऊपर तक पहुंचा दिया है। 3 टनल पानी को निर्माण समूह तक पहुंचाती हैं। वहां पहुंचकर ये पानी विभिन्न नालों में बंट जाता है और चक्की के पार्ट को घुमाने के बाद झरनों के रूप में पुल में गिर जाता है। कार्यक्रम के आखिर में कहा जा सकता है कि शुष्तर और देशफूल 2 ऐसे शानदार उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि लोग किस तरह से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करते थे। इस पानी से नदी के मार्ग में या चट्टान के अंदर खोदे गए गढ़ों में पंचक्कियों का संचालन होता था। इस पानी की ऊर्जा से गेहूं या दूसरे अनाज को पीसा जाता था और बांधों से कारून नदी के पानी को एक बड़ी चूने की चट्टान की ओर मोड़ दिया जाता था। इस प्रकार लोग सदियों तक प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते रहे और जल संसाधनों को सर्वोत्तम तरीके से प्रबंधित करते रहे। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या अब हमें इन पुरानी इमारतों की जरूरत नहीं है और 21वीं सदी में हम उन्हें बाय बाय कर दें।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचारों का सारांश। तेहरान ने यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी के बयान को रद्द कर दिया है। हमास का कहना है कि इसराइल और अमेरिका के मुकाबले में ईरान का साथ दिया जाएगा। यमन के अंसारुल्ला आंदोलन का कहना है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात अमरीका की कठपुतली हैं। गुजरात सरकार ने साबरमती आश्रम को म्यूजियम बनाने का फैसला किया, कांग्रेस ने उसका कड़ा विरोध किया है। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को अनुमति दें। खुदा हाफिज़।